الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم بے فائدہ پیدا کیے گئے ہو وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اور کیا تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے. اللہ رب العزت نے انسان کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا. یہ طے شدہ بات ہے کہ انسان خود نہیں پیدا ہوا, اس کا پیدا کرنے والا پروردگار موجود ہے اور یہ انسان اللہ رب العزت کی تخلیق کا شاہکار ہے. ایک عرابی سے پوچھا گیا, عرابی کا مطلب ہوتا ہے دیہاتی آدمی. جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں نا وہ سادہ ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات بات بڑی فتح کی کرتے ہیں. تو ایک عرابی سے پوچھا گیا کہ تم خدا کو مانتے ہو تو تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھو اگر کسی جگہ مینگنیاں پڑی ہوں تو انسان اندازہ لگاتا ہے کہ یہاں سے کوئی بکری گزری ہے. قدموں کے نشان کو دیکھ کر چور کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ وہ یہاں سے گزرا ہے, حالانکہ ان کو کسی نے آنکھ سے دیکھا تو نہیں ہوتا, مگر علامات سے پتہ چلتا ہے کہ ادھر سے چور گزرا, ادھر سے بکری گزری. تو جب یہ حال ہے تو وہ کہنے لگا کہ یہ آسمان جو ستاروں سے جگمگا رہا ہے, یہ زمین جس پہ پھول لہلہا رہے ہیں, یہ آبشاریں, یہ مرغزاریں, یہ پرند اور چرند, یہ ساری مخلوق اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی اس کا بنانے والا موجود ہے. ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل کیا ہے؟ وہ فرمانے لگے کہ دیکھو شہتوت کے پتے بکری بھی کھاتی ہے, ہرن بھی کھاتا ہے, ریشم کا کیڑا بھی کھاتا ہے اور شہد کی مکھی بھی کھاتی ہے. بکری نے کھایا تو اس کے اندر سے دودھ نکلا, ہرن نے کھایا تو اس کی ناف میں سے کستوری بنی, وہی پتا ریشم کے کیڑے نے کھایا تو اس میں سے ریشم بنا, وہی شہد کی مکھی نے کھایا تو اس میں سے شہد بنا. سب نے پتا کھایا اور پانی پیا, غذا ایک جیسی, ان پٹ ایک جیسا اور آؤٹ پٹ سب کا مختلف. کہنے لگا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا بنانے والا پروردگار موجود ہے. آپ سوچئے تو انسان ایسی مشینیں بنا سکتا ہے؟ ایک مشین میں پتے ڈالے جائیں, پانی ڈالا جائے, اس میں سے دودھ نکل رہا ہو, دوسری مشین میں پتے ڈالیں پانی ڈالیں اس میں سے شہد نکل رہا ہو, تیسری مشین میں پتے ڈالیں پانی ڈالیں اس میں سے ریشم نکل رہا ہو, اور چوتھی کے اندر سے کستوری نکل, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसी मखलूक को पैदा कर दिया कि देखो एक चीज खा रहे हैं, एक पानी पी रहे हैं, मगर हर में से अलग अलग चीज इंसान को मिल रही है। ये अल्लाह ताला की कुदरत का शाहकार। इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में एक दहरिया था, उसने इमाम साहब को चैलेंज कर दिया कि अल्लाह ताला के वजूद पर आप मेरे साथ मुनाज़रा करें। दहरिया कहते हैं जो अल्लाह ताला के वजूद को मानता ही नहीं, जो लोग कहते हैं कि खुद बखुद दुनिया बन गई। इमाम साहब ने चैलेंज कबूल कर लिया। अब इमाम साहब चूंकि वक्त के बड़े मारूफ और नुमाया बुजुर्ग थे, जब ये बात लोगों तक पहुंची तो बहुत ही मशहूरी हुई, हत्ता के हजारों की तादाद में लोग वहां आकर इकट्ठे हो गए। टाइम तय था कि फलां वक्त आएंगे और यहां पर मुनाजरा करेंगे। दहरिया भी पहुंच गया। वक्त मुकर्रा से इमाम साहब को पहुंचने में थोड़ी सी देर हो गई। जब देर हो गई तो वो दहरिया ने तो स्टेज पे पहुंच चढ़ के बोलना शुरू कर दिया कि देखो ये मुझसे डर गए हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं, कोई दलील नहीं, ये मुझे फेस नहीं कर सकते, ये वो ऐसी ऐसी बातें कि न पूछो। खैर अभी वो ये बातें बना ही रहा था कि इतने में इमाम साहब तशरीफ ले आए। उसने इमाम साहब से कहा जी हार मान लें चूंकि आप आए देश में। इमाम साहब ने फरमाया भाई मैं वक्त से चला था, वक्त से पहुंच जाता, मगर मुझे उधर पेश आ गया, रास्ते में देर हो गई। उसने कहा कौन सा उधर पेश आया? फरमाने लगे कि एक जगह रास्ते में बड़ा दरिया था, वो मुझे अबूर करके आना था और कश्ती नहीं थी तो मैं इंतजार में बैठ गया, तो मैंने देखा कि एक तरफ खुद बखुद कट गया, फिर उसके तख्ते बन गए, फिर वो तख्ते आपस में जुड़ने शुरू हो गए और वो कश्ती बन गई, और वो कश्ती फिर दरिया में आ गई, तो उस कश्ती पर बैठकर मैंने दरिया अबूर किया और यहां पहुंचा। उसने जब ये सुना तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, लो इतना डर है मेरा कि अब इनका दिमाग ही काम नहीं करता। कहते हैं दरख्त खुद खुद कश्ती बन गया। उन्होंने वही पकड़ लिया। उनका अच्छा ये बताओ कि अगर एक दरख्त खुद बखुद कट के कश्ती नहीं बन सकता, बनाने वाले की जरूरत है, ये इतना बड़ा जहान खुद बखुद कैसे बन गया? इसके भी तो बनाने वाले की जरूरत है ना। अब दलील ऐसी थी कि वो खुद ट्रैप हो गया, फंस गया, तो बड़ा परेशान कहने लगा अच्छा ये तो मैं मानता हूं कि हाँ कोई ना कोई बनाने वाला है, लेकिन मुझे चंद सवालों का जवाब दें। आप सुनाए बहुत अच्छा। कहने लगा पहला सवाल ये है कि मुझे आप ये बताइए कि पहले जमीन थी, उससे पहले आसमान था, उससे पहले फलां था, उससे पहले अल्लाह ताला थे, तो ये बताएं कि अल्लाह ताला से पहले कौन था। ये उसने क्वेश्चन किया कि मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दें कि अल्लाह ताला से पहले कौन था। इमाम साहब ने उससे पूछा कि ये बताओ भाई कि कुछ पढ़े लिखे भी हो? उसने कहा हाँ मैं पढ़ा हुआ हूँ। हमारे लगे गिनती गिनो, गिनती सुना दे। उसने कहा एक दो तीन चार पाँच। आपने फरमाया गिनती सुनाओ। उसने कहा एक दो तीन चार पाँच। भाई गिनती सुनाओ। उसने कहा एक दो। आपने कहा ये बताओ पाँच से पहले क्या है? उसने कहा चार। कि चार से पहले क्या है? तीन। तीन से पहले क्या है? दो। और दो से पहले क्या है? एक। और एक से पहले क्या है? कहते जी वो तो शुरू यहीं से होती है। तो मैं नहीं, तुम एक से पहले से गिनो। उसने कहा जी एक से पहले से नहीं, वो शुरू ही यहीं से होती है। मैं तो मैं देखो मैं कह रहा हूं गिनती गिनो और आप कहते हो कि एक से शुरू होती है, आगे तो गिन सकते हैं पीछे नहीं गिन सकते। तो मैं इसी तरह हम भी यही कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत पहले मौजूद थे, उसने फिर इस कायनात को बनाया। उसने कहा अच्छा ये बात भी मान ली, लेकिन एक मेरे जहन में बात खटक रही है कि आप मुझे ये बताएं कि अल्लाह ताला का चेहरा किस तरफ है। देखे ना, मैं आपके सामने हूँ, मेरा चेहरा आपकी तरफ, आपका चेहरा मेरी तरफ, हर चीज का एक चेहरा होता है ना किसी ना किसी तरफ। तो ये बताएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का चेहरा किधर है। अजीब सवाल पूछा इमाम साहब ने, फरमाया बहुत अच्छा। चुनाचे उन्होंने क्या किया, एक मोमबत्ती जलाई और उसके सामने रखी और फरमाया कि भाई ये बताओ कि इस मोमबत्ती का चेहरा किधर है। अब वो थोड़ी देर देखता रहा, फिर कहे जी के हर तरफ है, अगर मशरक कहूँ तो रोशनी मगरब भी जा रही है, अगर मगरब कहूँ तो रोशनी शुमाल में भी जा रही है, जनूब में भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है, हर तरफ रोशनी जा रही है। उसने कहा जी के इसका चेहरा तो हर तरफ है। कहने लगे बस मेरी बात का जवाब उसने दे दिया कि अगर ये मोमबत्ती है, छोटी सी रोशनी है, इसका चेहरा हर तरफ है, तो अल्लाह ताला भी जमीन व आसमान का नूर है, उसका चेहरा भी हर तरफ है। उसने कहा अच्छा ये बात भी मुझे समझ में आ गई, अब एक बात का जवाब मुझे और बता दें, और वो ये है कि ये बताएं कि हम तो यहाँ हैं घर पे नहीं, जब घर हैं तो यहाँ नहीं, लेकिन आप कहते हैं कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, तो हर जगह मौजूद का क्या मतलब? यानी आप भी ये कहते हैं कि जी अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, तो हर जगह मौजूद का क्या मतलब? आपने फरमाया देखो भाई मैं आपको बात समझाता हूँ। आपने अपने किसी शागिर्द से कहा कि जरा एक प्याला दूध का लाओ, चुनाचे पेश कर दिया गया, आपने उसके सामने दूध रखा और फरमाया कि बताओ प्याले में क्या है, उसने कहा दूध। आपने फरमाया इसमें मक्खन भी है, उसने कहा इसमें मक्खन भी है, भाई जहां दूध है उसमें मक्खन है। आपने फरमाया अच्छा मुझे बताओ कि कहां पे मक्खन है कहां पे नहीं है। वो सोच में पड़ गया, अब कैसे उंगली का इशारा करे कि यहां मक्खन नहीं है यहां है। कहने लगा जी पूरे दूध में मक्खन मौजूद है। आपने फरमाया कि देखो एक मखलूक है, मैं पूछता हूं कि बताओ कहां दूध में मक्खन है कहां नहीं, आप कहते हो हर जगह मौजूद है, हम भी यही कहते हैं कि अल्लाह ताला भी हर जगह मौजूद है। कहने लगा अच्छा बात मुझे समझ आ गई। खैर उसने तो बात मान ली। एक और इसी तरह का मनाजरा एक बादशाह के सामने पेश आया। बादशाह डहरिया था, हाकिम वक्त डहरिया था, चुनाचे इमाम साहब ने उसको सारे जवाब दिए। आखिर पे उसने एक जवाब एक सवाल और पूछा। कहने लगा जी के आप ये बताएं कि अल्लाह ताला हर वक्त काम क्या करता है। अब डहरिये ने तो जो मर्जी चाहे सवाल पूछे उसको क्या है? तो उस डहरिये ने सवाल पूछा, कहता है कि जी मुझे ये बताएं कि अल्लाह ताला हर वक्त काम क्या करता है। तो इमाम साहब ने फरमाया कि बात यह है कि इतने सवालों के जवाब मैं दे चुका हूं, मैं यहाँ नीचे खड़ा हूँ, आप यहाँ ऊपर तख्त पे बैठे हैं, अब इसका जवाब अगर आपने मुझसे पूछना है ना तो आप यहाँ आए और मुझे ऊपर बैठे फिर मैं जवाब दूंगा। तो उन्होंने भी कह दिया जी ठीक है इसका जवाब जरा सुन ले। चुनाचे बादशाह नीचे आया, आप ऊपर चल के तख्त पे बैठ के फरमाने लगे बस अल्लाह ताला हर वक्त यही काम करता है, जो ऊपर होते हैं उनको नीचे लाता है, जो नीचे होते हैं उनको ऊपर लेके जाता है। पर वाकई हर वक्त यही है, कोई दे रहा है तो कोई ले रहा है, कोई ऊपर जा रहा है तो कोई नीचे है। इशारा तेरा काफी है घटाने और बढ़ाने में, अल्लाह का एक इशारा काफी है। तो अगर हम गौर करें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के वजूद के दलाइल हमारे अपने अंदर मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, आप देखिए ये अल्लाह ताला की कुदरत का कैसा शाहकार है। इंसान, हर इंसान का ये जो अंगूठा है ना, इस अंगूठे की जो लाइनें हैं वो हर दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है। अब अंगूठे की जगह कितनी छोटी सी है, इतनी छोटी सी जगह अगर किसी बंदे को दी जाए कि जी इस पर आप मुख्तलिफ लाइनें लगाओ, तो वो 100 लाइनें लगाने के बाद कह गई बस। लेकिन दुनिया के अंदर अरबों इंसान है, 6 अरब इंसान हैं, और हर इंसान के अंगूठे की लकीरें दूसरे इंसान से मुख्तलिफ। ये अल्लाह ताला की कुदरत कितनी बड़ी निशानी है। चुनांचे आज भी इतने बड़े साइंसी दौर में फिंगर टिप्स हैं, फिंगर प्रिंट्स कहते हैं, वो फिंगर प्रिंट्स ला। फिंगर प्रिंट्स का क्या मतलब? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर इंसान को एक से दूसरे से मुख्तलिफ फिंगर प्रिंट्स देकर दुनिया में भेजा है। अच्छा देखो कि इंसान के जो चेहरा होता है वो चंद इंच चौड़ाई और चंद इंच लंबाई एक कागज के साइज से भी छोटा होता है। जो A4 साइज का कागज होता है ना, उसका उसका साइज बंदे के चेहरे से बड़ा होता है। तो A4 कागज के साइज से भी थोड़ा साइज है चेहरे का, लेकिन अरबों इंसानों के चेहरे एक दूसरे से मुख्तलिफ। हालांकि वही आंखें हैं, वही नाक है, वही होंठ है, वही पलकें हैं और सब कुछ वही है, लेकिन हर इंसान का चेहरा दूसरे से मुख्तलिफ। तो इस पर जरा गौर करें कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तखलीक का कितना बड़ा शाहकार है। हर इंसान की आंखें, चेहरा, नाक वही आगा हैं, मगर एक की शक्ल दूसरे से मुख्तलिफ। वाह मेरे मौला, तेरी कुदरत पे कुर्बान जाएं। किसी पेंटर को कहें ना जी कि यहाँ जरा डिफरेंट चेहरे बना के दिखाओ, वो 150 चेहरे बना के कहेगा जी अब मुख्तलिफ तो नहीं बनते। और खरबों इंसान आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं, और हर एक अपनी शक्ल लेके आ रहे हैं। कितने डिजाइन है अल्लाह के पास, अल्लाह तेरी शान। तो ये अल्लाह ताला के वजूद की बेहाल मौजूद है। इंसान गौर करे तो बेख्तियार दिल से सुभानअल्लाह निकलती है। अच्छा जो लोग कहते हैं जी के इंसान खुद बहुत बना, तो जब खुद बहुत बनता है तो उसमें तो फिर एक ही उसूल काम आता है ना। मसलन बाल उगने का एक उसूल होगा तो पूरे जिस्म में वही उसूल होना चाहिए बाल उगने का, खुद बहुत से बना। अच्छा अब गौर करें, इंसान के जिस्म में सर के बालों के बढ़ने की रफ्तार और है, दाढ़ी के बालों के बढ़ने की रफ्तार और है। मतलब सर के बाल पूरी जिंदगी में मेरे ख्याल कहीं 9-10 फुट बढ़ जाते होंगे हर इंसान के, कटवाता रहता है, लेकिन हो सकता है इससे भी ज्यादा 15-20 फुट बढ़ते हो उसके टोटल जिंदगी में जो बाल आते हैं। लेकिन दाढ़ी के बाल 5-6 इंच भाई इतने बढ़ते हैं, उसके बाद रुक जाते हैं। अच्छा पलकों के बाल वो 1 इंच भी नहीं होते, इससे थोड़े बढ़ते हैं रुक जाते हैं। भवों के बाल उससे भी छोटे, थोड़े से बढ़ते हैं रुक जाते हैं। बाजुओं के जो बाल होते हैं हथेलियों पे, बाजुओं ये हाथों की बैक साइड पे और बाजुओं पे, ये उससे भी छोटे होते हैं। तो तमाम बालों के बढ़ने की रफ्तार और मिकदार मुख्तलिफ है। अगर ये खुद बखुद बना और बालों की रफ्तार एक होती, और जितने लंबे सर के बाल होते हैं इतनी लंबे पलके होती, इतनी लंबी भवें होती, इतनी लंबी दाढ़ी होती, इतने लंबे बाजुओं के बाल होते, तो इंसान बेहतरीन किस्म का भूत नजर आता है, खूबसूरत किस्म का भूत नजर आता। तो ये इंसान नजर ना आता, भूत प्रेत नजर आता, यानी डरावनी चीज नजर आती। वो कौन सी ताकत है जिसने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के बालों की रफ्तार को कंट्रोल किया हुआ है, और ऐसा कंट्रोल किया है कि खूबसूरत लगता है। सर के बाल लंबे खूबसूरत लगते हैं, फिर भवों के बाल अपने खूबसूरत लगते हैं, फिर पलकों के बाल खूबसूरत लगते हैं, फिर दाढ़ी के बाल खूबसूरत लगते हैं, जिस्म के बाकी हिस्सों के बाल खूबसूरत लगते हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के वजूद की कितनी अच्छी दलील है। अच्छा एक बात बताएं, अगर खुद ब खुद इंसान बना तो फिर इंसान के जिस्म में हड्डी के बढ़ने की रफ्तार भी एक जैसी होनी चाहिए थी पूरे जिस्म में। अब देखिए कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी टांग अगर देखें तो वो मुमकिन होती है कि 6-7 इंच लंबी, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो माशाल्लाह टांगे हो सकता है कि फिर 3-4 फुट तक लंबी हो जाए, यानी 8 गुना बढ़ गई। तो मालूम हुआ कि टांगों की हड्डियों के बढ़ने की मिकदार 8 गुना। अच्छा अगर सर के बढ़ने की मिकदार भी 8 गुना होती तो बच्चे का सर देख लो और उसको 8 गुना करो तो माशाल्लाह हैं कितना बड़ा तरबूज बनता है। इंसान का सर वो बच्चे से 8 गुना होता तो फिर इतना बड़ा सर होना चाहिए था एक रफ्तार। और अगर इंसान के जिस्म पे बाकी हड्डियां भी इसी रफ्तार से बढ़ती, मिसाल के तौर पर इंसान के दांत जो बचपन में आते हैं वो अगर उसी रफ्तार से बढ़ते जिस रफ्तार से इसकी टांगें बढ़ी, जिस रफ्तार से टांगें लंबी हुई अगर उसी रफ्तार से दांत लंबे होते तो कितने लंबे दांत होते हैं माशाल्लाह। इंसान डायनासोर के दांत भूल जाता, लेकिन दांत उस रफ्तार से नहीं बढ़ते जिस रफ्तार से इंसान की टांग की हड्डी बढ़ती है। नाक की हड्डी उस रफ्तार से नहीं बढ़ती। अच्छा अगर नाक की हड्डी भी उसी रफ्तार से बढ़ती जिस रफ्तार से टांग की हड्डी बढ़ रही है तो नाक कितनी लंबी होती है, हाथी की नाक नजर आती। अच्छा अगर कान भी उसी रफ्तार से बढ़ते तो हमारे कान कितने बड़े नजर आते। आखिर क्या वजह है। अच्छा इंसान की आंख भी उसी रफ्तार से बढ़ती जिस रफ्तार से टांगे बढ़ रही हैं तो आंख का डेला कितना बड़ा होता माशाल्लाह, फिर तो होना चाहिए था फुटबॉल के बराबर। तो मालूम हुआ कि इंसान के जिस्म में हड्डी के बढ़ने की मिकदार और रफ्तार जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ है। वो कौन सी जात है जो कहीं ज्यादा लंबा करती है कहीं कम करती है हत्ता के खूबसूरत इंसान बन जाता है, उस जात का नाम परवरदिगार है। तो इसलिए इंसान अगर गौर करे तो दिल गवाही देता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात मौजूद है और वो ही इंसान का पैदा करने वाला है। इस तरह की और कई मिसालें हैं जिन पे आप खुद गौर कर सकते हैं। एक दैरिया था, तो दैरियों का काम यही होता है कि वो सोचते रहते हैं इतराज करते रहते हैं। तो एक दफा वो जा रहा था, थक गया, एक जगह लेट गया तो वो आम का दरख्त था। अब जब आम के दरख्त के नीचे लेटा तो उसकी नजर आमों पर पड़ी तो अपने दिल में कहने लगा कि ये मुसलमान कहते हैं कि खुदा ने कायनात को बनाई, इनके खुदा के काम भी बड़े बेढंगे। खुद कहने लगा, कहने लगा इनके खुदा के काम भी बड़े बेढंगे। वो इसलिए कि तरबूज जो है उसकी बेल पतली थी और तरबूज इतना बड़ा, और आम का दरख्त इतना बड़ा और आम छोटा सा, तो ये बेढंगा काम। बड़ा दरख्त था तो बड़ा फल लगता, छोटी बेल थी तो छोटी। बस अभी यही बैठा सोच ही रहा था कि एक परिंदे ने ऊपर से जो आम तोड़ा और वो उसकी कनपिटी पे आके लगा। अब जब कनपिटी पे आके पड़ा और दर्द भी हुई तो सहलाने लगा, कहने लगा या अल्लाह तेरे काम तो बड़े अच्छे, अगर ये तरबूज के बराबर होता तो मेरा तो भेजा ही निकल जाता। تو انسان اگر غور کرے تو اس کو اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گی ہر طرف، جہاں بھی دیکھے. سبحان اللہ، تیری شان ہے. انسان کے کھانے کے لیے، پینے کے لیے پروردگار عالم نے کیا خوبصورت جو ہے پھل اور میوے اور کیا کیا چیزیں زمین سے نکالی ہیں. آپ دیکھیں زمین کے اندر پانی ڈالتے ہیں نا، لیکن ہر نکلنے والا بیج اپنا پھل دے رہا ہوتا ہے. پھر ایک ہی بیج ہے، اور اس بیج میں سے جو پودا نکلتا ہے اس پر مختلف رنگوں کے پھول لگ رہے ہوتے ہیں، اور پھولوں کے اندر شیڈ دیکھو، ان کی نزاکت دیکھو، ان کی خوشبو کو دیکھو، سبحان بے اختیار سبحان اللہ نکلتا ہے. اے اللہ، جب آپ نے اتنے خوبصورت پھولوں کو پیدا فرما دیا تو آپ کے اپنے حسن و جمال کا کیا عالم ہو، وہ کیسے عظیم ذات ہے. تو اللہ رب العزت کے وجود کی نشانیاں موجود ہیں، ان نشانیوں کو دیکھ کر بے اختیار دل کہتا ہے. ایک بات پہ غور کرنا کہ کئی مرتبہ سائیکل بچے چلاتے ہیں نا، نہیں چلو گاڑی چلاتے ہیں لوگ، کار چلاتے ہیں، اور کار کا ویل بیلنس نہیں ہوتا تو کار کے اندر بیٹھے ہوئے وائبریشن فیل ہو رہی ہوتی ہے، جھٹکے لگ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں جی اس کے جو ویل ہے نا وہ بیلنس نہیں ہے. اچھا وہ کیل کتنی، وہ ویل کتنی رفتار سے چل رہے ہوتے ہیں؟ 70 میل کے حساب سے، 60-65 میل کے حساب سے. تو 65-70 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتے ہیں، اور انسان کو اس کے ان بیلنس ہونے کی وجہ سے اتنے جرک لگتے ہیں. اور وزن کتنا؟ جی 10 گرام اور 20 گرام اور اتنا فرق تھا. تو وہ ویل والے اس کو بیلنس کرتے ہیں تو وہ فرق نکال دیتے ہیں. اب غور کیجئے کہ یہ جو زمین ہے نا پوری، یہ بھی گھوم رہی ہے، اور اس کے گھومنے کی رفتار پتہ کیا ہے؟ 1000 میل فی گھنٹہ. تبھی تو 24 گھنٹوں میں اس کا چکر پورا ہوتا ہے. اس کا جو سرکمفرنس ہے وہ 24000 میل کے قریب ہے. تو 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین گھوم رہی ہے. اب بتائیے کہ اس کے اندر اگر ان بیلنس ہوتا تو کتنے جرک لگتے ہمیں. اللہ تعالیٰ نے زمین کو کتنا پرفیکٹ بیلنس کیا کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا زمین گھوم بھی رہی ہے کہ نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو یہ ہلتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پہاڑوں کے کیل گاڑ دیے، پہاڑوں کے کیل گاڑ دیے، اور ان کیلوں کے گاڑنے کی وجہ سے زمین بیلنس ہو گئی. اللہ تیری شان، کہاں کہاں پہاڑ کے ویٹ، بیلنسنگ ویٹ رکھ دیے ہیں، زمین کو بیلنس کر دیا. 1000 میل فی گھنٹہ، یعنی جہاز بھی چلتا ہے تو 500-600 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے پیسنجر، یہ جو جہاز چل رہے ہوتے ہیں، اور زمین چل رہی ہے 1000 میل فی گھنٹہ، مگر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ زمین چل بھی رہی ہے، نہیں پتہ نہیں چلتا. تو وہ کتنی بڑی ہستی ہے جس نے زمین کو اتنا پرفیکٹلی بیلنس کر دیا. اچھا، سورج زمین سے کچھ فاصلے پر ہے. اگر یہ فاصلہ دگنا ہوتا تو زمین پہ برف جمع کر دی، زمین پہ برف جمع کر دی. اور اگر یہ فاصلہ آدھا ہوتا تو زمین پہ سبزے نام کی کوئی چیز نظر نہ آتی، کیونکہ ٹیمپریچر جتنا ہوتا ہے اس سے ڈبل ہو جاتا. پھر تو ڈبل ٹیمپریچر پہ تو کوئی چیز زندہ ہی نہ رہ سکتی. یہ فاصلہ کس نے سیٹ کیا زمین کا سورج سے؟ अच्छा फिर देखें, जमीन का साइज अगर डबल होता तो जो दिन अब 24 घंटे का है फिर वो कितने घंटे का होता? 48 घंटे का ना, 48 घंटे बाद फिर रोशनी आती है। तो 48 घंटे के दिन में क्या इंसान जाग सकता था? 48 घंटे का दिन होता तो बंदे की तो हालत यह है कि 8 घंटे काम करने के बाद थक जाता है, तो ये बाकी फिर दिन के हिस्से में क्या करता? 24 घंटे का दिन बनाया, 8 घंटे काम करो, 8 घंटे नींद में गुजारो और बाकी 8 घंटे तुम घर के बीवी बच्चों के जिम्मेदारियों को पूरा करो। तरतीब देखो इंसान की कैसी बन रही है। चुनाचे 24 घंटे पे हम सब त्यून हो गए। अगर 48 घंटे होते और 48 घंटे में हमें अपनी जिंदगी को स्केड्यूल करना पड़ता तो फिर एक दिन में तो हम अपना दफ्तर स्केड्यूल ना कर सकते। फिर हर दफ्तर में सोने के लिए बेड भी लगाने पड़ते। चौबीस घंटे का दिन हमारे लिए कितना सूटेबल है? फिर हमारे लिए टेम्परेचर देखो कितना सूटेबल है। सर्दियां होती हैं तो इतनी भी सर्दी नहीं कि बंदा बर्दाश्त ना कर सके, और गर्मियों में इतनी भी गर्मी नहीं कि बर्दाश्त ना कर सके। अब देखें इसी जमीन के ऊपर जो पोल है वहां पर इतनी ठंडक होती है कि इंसान वहां जिंदा ही नहीं रह सकता। यानी अगर स्पेशल लिबास पहन के जाए तो वो और बात है, आम आदमी वहां जाकर जिंदा नहीं रह सकता। तो अल्लाह ताला ने ऐसा फासला मुतय्यन किया कि इंसान के लिए दिन और रात दोनों जो है वो आसान। फिर अगर चांद ना होता तो जो समुंदर के पानी है उनके अंदर मद्दोजजर न होती, वेव्स न होती, तो पानी के अंदर स्मेल आ जाती। पता है समुंदर के अंदर कितनी मछलियां हैं, और मछलियां दुकान पे ला के रखो तो कितनी स्मेल होती है। समुंदर के पानी में स्मेल नहीं होती, हालांकि वहां पर करोड़ों अरबों खरबों मछलियां मौजूद हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि एक तो अल्लाह ने उसको साल्टिश बना दिया, और दूसरा उसके अंदर जो है ना हर वक्त टर्बुलेंस है। उस टर्बुलेंस की वजह से पानी हर वक्त जो है वो गर्दिश कर रहा है और ऑक्सीजन ले रहा है। नीचे का पानी ऊपर आता है, ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन लेता है, और ऑक्सीजन के बाद लेने से इसलिए नीचे की जो मखलूक है उसको ऑक्सीजन भी मिल रही है और वो मखलूक जो है जिंदा भी है और उसमें स्मेल भी नहीं है समुंदर के पानी में। अल्लाह ताला की शान देखो। अगर चांद का फासला आधा होता जितना इस वक्त है तो फिर ये समुद्रों का लेवल इतना ऊंचा होता कि जमीन जो है सारी की सारी पानी में डूब जाती, सिर्फ पहाड़ों की चोटियां बाकी रह जाती। अब हर हर कदम पर ये बताइए कि ये सब चीजें किसने सेट की हैं? कह तो देते हैं जी कि खुद बखुद बन गई, मगर खुद बखुद हर चीज कैसे ठीक हो गई? एक डेरिया मेरे पास आया, कहने लगा जी कि बस इंसान खुद बहुत बन गया। मैंने कहा तुम्हारी नाक तुम्हारे पीछे की तरफ क्यों नहीं हुई है? ये जो हर बंदे की नाक आगे की तरफ है, ये बताओ नाक पीछे की तरफ क्यों नहीं? अगर तुम्हारी पीछे की तरफ होती तो तुम नाक कैसे साफ करते? हो सकती थी ना पीछे की तरफ भी है, आगे की तरफ आंखें होती पीछे की तरफ नाक होती। तो इंसान फिर सर रख के सो सकता है? नाक के बल सोता है या आंखों के बल सोता? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को कायनात में अपनी तखलीक का शाहकार बनाया है। देखें हमारे लिए खाने की क्या क्या बेहतरीन किस्म की गिजाएं अल्लाह ने रखी है। इंसान को अकल दिया, दिमाग दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो तो इसलिए हक ये बनता है कि जिसका खाइए उसके गीत गाइए। तो हम अल्लाह ताला का दिया खाते हैं, हम उसके गीत गाएं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि मेरे मालिक तेरा कितना करम है, तूने हमें सेहत दी, तूने हमें रिस्क दिया, तूने हमें इज्जत दी, तूने हमें दिमाग दिया, तूने हमें इतनी नेमतों से नवाजा, हम तो इन नेमतों का हक भी अदा नहीं कर सकते, हम तो इन नेमतों का हक भी नहीं अदा कर सकते। हमारे एक दोस्त थे, बच्चे को लेकर जा रहे थे साइकिल मोटर पे, कुदरतन स्लिप हो गया मोटरसाइकिल और वो गिर गए। अल्लाह ताला की शान, जब वो गिरे तो उनकी आंख पर इस तरह से जख्म आया कि आंख के ऊपर का जो ये है ना पपोटा, ये कट गया और आंख जो है वो बिल्कुल नंगी, यानी आंख के ऊपर कोई कवर नहीं है, लिड नहीं है। अब जख्म तो ठीक हो गया, लेकिन जैसे मछली की आंखें होती हैं साफ डेला नजर आता है, इसी तरह उनका डेला नजर आ। कुछ अर्सा तो चला, लेकिन मसला क्या बना कि कुछ वक्त के बाद उनके आंख के ऊपर मिट्टी की एक हल्की सी तह चढ़ जाती। यानी आप अगर एक दिन घर बंद करके जाए ना, वापस आए तो अगले दिन शीशे के ऊपर ना हल्की सी तह चढ़ी होगी, वो मिट्टी होती है, डस्ट होती है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो हवा में होते हैं और वो सेटल डाउन हो जाते हैं। अब वो डस्ट पार्टिकल जो है ना वो आंख के ऊपर सेटल डाउन हो जाते हैं, तो वो फिर उनको देखने में दिक्कत आती, उसको उतारने के लिए उनको आंख धोनी पड़ती। अब आंख एक दफा धोए, दो दफा धोए, चार दफा धोए, दस दफा धोए, लेकिन जब धोता ही रहे तो फिर तो इंसान का गोश्त जो है वो भी गलना शुरू हो जाता है। इसकी मिसाल यूं समझे कि इंसान कपड़े धोए ना, अगर ये बर्तन धोए या कोई और चीज, पानी में हाथ रहे तो अपने हाथों को कभी देखा करे तो हाथ का गोश्त यूं महसूस होता है जैसे नॉर्मल नहीं है, गलने वाला हो गया। तो वो कहने लगे कि उनकी आंख जो है वो बार बार धोने से उनके ये जो रुखसार थे इसका गोश्त इतना अजीब हो गया कि पानी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, जख्म बन गया। अब डॉक्टरों के पास जाए, डॉक्टर कहें कि और कोई इलाज नहीं। फिर डॉक्टर ने बताया कि ये बात ये है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुदरती निजाम बनाया है, हर इंसान की आंख के ऊपर ये मट्टी की तह चढ़ती है, लेकिन इंसान की जो पलकें हैं ना ये थोड़ी थोड़ी देर बाद वाइपर का काम करती है, ये ऑटोमेटिक वाइपर है, हर चंद सेकंड में बगैर हमारे इरादे के ये वाइपर चल रहा है। और जब ये वाइपर चलता है तो इसके पीछे नमी होती है हल्की सी जो जिस्म इसको देता है, और उस नमी को लेके ये जैसे स्क्रीन को वाइपर साफ कर रहे होते हैं ना, अल्लाह ताला ने हमारे आंख की स्क्रीन को साफ करने के लिए वाइपर बनाया। वो कहने लगे जी कि आपके ये वाइपर जो है वो काम नहीं कर रहा। वो दोस्त कहने लगे कि हम इतनी मामूली चीज समझते हैं, जब ये नेमत छिन गई तब एहसास हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की कितनी बड़ी नेमत है। अब डॉक्टर मिलके पलके नहीं बना सकते, उसके आंख के ऊपर का ये हिस्सा नहीं बना सकते। तो जब इतनी छोटी सी चीज इतनी बड़ी नेमत है तो फिर बड़ी चीजें कितनी बड़ी बड़ी नेमतें हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करें, उसकी बंदगी करें और उसके हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया में भी हमें इज्जतों भरी जिंदगी दे, आखिरत में भी अता फरमाए। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। थोड़ी देर के लिए मुराकबा कर लीजिए।